जापान में आए भूकंप में इस बात की राहत है कि कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ और साथ ही कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। जापान के इसी क्षेत्र में 5 साल पहले भूकंप आया था और उसके कारण आई सुनामी के कारण वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद हुआ और उसका असर आज तक महसूस हो रहा है। अब एक विशेषज्ञ का कहना है कि ये दोनों ही भूकंप एक दूसरे से जुड़े हैं। ये हैं वो आवाजें जब जापान के उत्तरी पूर्वी तट पर लोगों को चेतावनी दी गई सुनामी की। मंगलवार की सुबह आए 7.4 तीव्रता के भूकंप से सुनामी की चिंता हो गई। बाद में जियोलॉजिकल सर्वे ने रिक्टर स्केल पर इसे 6.9 तीव्रता का किया और भूकंप की खबर एनएचके पर पहली बार दी गई।
Short while ago, we have observed what we believe could be a rip current or a backwash. This could be an indication that water may rush ashore after this. At 6:49 a.m., a 60-centimeter tsunami was observed in Onahama Port in Iwaki City, Fukushima Prefecture, and tsunami waves could have reached the shorelines.
सुनामी की चेतावनी बाद में हटा दी गई और इससे पहले 140 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई की लहरें रिकॉर्ड की गईं। मंगलवार के इस भूकंप से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के एक रिएक्टर के वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी अस्थायी रूप से आ गया और इस हादसे ने 5 साल पहले की घटना याद दिला दी जब भयंकर भूकंप और सुनामी ने इस पावर प्लांट को शक्तिहीन कर दिया और एक परमाणु संकट उठ खड़ा हुआ था। हजारों लोग मारे गए, पूरी की पूरी आबादी जैसे खत्म हो गई और अभी तक उस रेडिएशन की सफाई का काम चल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट विशेषज्ञ हैं एसोसिएट प्रोफेसर डेल टोमिनी होज। वो 2011 में जापान में भेजी गई उस टीम के सदस्य थे जो वहां सुनामी के बाद हुए नुकसान का आकलन करने गई थी। वो कहते हैं कि ये दोनों भूकंपों का आपस में संबंध है।
In March 2011, there was a magnitude 9 earthquake, which was one of the largest earthquakes ever recorded in recent Earth history. And it was incredibly devastating, affecting such a large area. Interestingly, this earthquake, which occurred in roughly the same area but was much smaller, although 5 years later, is in fact what we now realize an aftershock connected to the original one. So the earthquake in 2011 released lots of strain that had built up in the rocks on the sea floor of the Pacific Ocean. But unfortunately, that's increased stresses north and south along the fault line just offshore of Japan. And today, some of that stress was released in an aftershock earthquake.
ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में एडवोकेसी एंड रिसर्च ग्रुप के अध्यक्ष और जापान में पूर्व डिप्लोमेट रिचर्ड ब्रोनास्की ने एबीसी पर बताया कि जापान में फुकुशिमा प्लांट के पास जुड़ी समस्याओं का अंत दिखाई नहीं देता।
When you have a meltdown, the radioactive material, about 100 tons in each reactor, melts down through the basement. Through the concrete into the substrata, the soil, where it's picked up by water and it migrates out into the sea or it migrates into surrounding countries. The Japanese have tried with their brilliant technology to wall this in, to contain it with frozen ice and all sorts of bizarre ways of doing it, but they haven't really succeeded. So that's continuing to leak and it will continue to leak for the foreseeable future for quite a long time, and that's one of the problems.
Richard का कहना है कि टोक्यो के पास भी इस सिस्मिक एक्टिविटी का असर दिखाई देता है और दूसरे पावर प्लांट्स पर भी इसका खतरा और असर बना हुआ है। चाहे जापान में ऊर्जा नवीनीकरण स्रोतों की तरफ काफी झुकाव हुआ है, लेकिन रिचर्ड कहते हैं कि ऐसा शायद ही हो कि जापान भविष्य में परमाणु शक्ति पर पूरी तरह से निर्भर ना करे।
There has been quite a big move towards constructing offshore solar grids and so on, but the trouble is you've got an industry that's very much beholden to the nuclear power industry, and you've got a lot of zealots in government, in academia, in the technical companies who want to continue to have reactors. But they're becoming, I think, if I could risk a judgment, I think they're probably less influential than they have been before. You've got a right-wing government, Shinzo Abe and the Liberal Democratic Party want to do these things, but I think they're being constrained and will continue to be constrained by the fear and the general feeling in Japan that we don't want reactors.